ये नहीं कहना चाहिए कि जी एक की वजह से हमने एक गोल नहीं कर पाए
और टीम की बुरी परफॉर्मेंस पर पर्दा डालने के लिए कहते रहे हमारा हदफ यह है। तो हदफ आपके सामने
कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में वो खिलाड़ी जाएं, वो एथलीट जाएं जिनके जीतने का कुछ चांस हो।
इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री डेफिनेटली दैट टू इंडियंस आर ऑन द पोडियम।
एशियन गेम्स में 350 का पाकिस्तानी दस्ता, कारकर्दगी या सैर सपाटा, हॉकी में गोल्ड मेडल का लॉलीपॉप, और पाकिस्तान क्या वाकई अंपायरिंग की वजह से हारा? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। 18वें एशियन गेम्स खत्म होने में अब सिर्फ 2 रोज बाकी रह गए हैं। चीन तिलाई तमगों की सेंचुरी मुकम्मल कर चुका, जापान के तिलाई तमगों की तादाद 60 तक जा पहुंची, लेकिन 35 खेलों में शिरकत करने वाले पाकिस्तान के 350 रुकनी दस्ते के हिस्से में अब तक कांसी के सिर्फ 3 तमगे आ सके हैं। एशियन गेम्स जब शुरू हुए थे तो उस वक्त माहिरीन और मुबसरीन ये कह चुके थे कि अगर किसी खेल में कुछ उम्मीद है तो वो हॉकी से है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने भी सबको यही सुहाने सपने दिखाए थे कि गोल्ड मेडल जीतना है और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, लेकिन ये उम्मीद फाइनल से पहले ही उस वक्त दम तोड़ गई जब जापान ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में 1 गोल से शिकस्त दे दी। शिकस्त के बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम के मैनेजर हसन सरदार ने यह बयान दाग दिया कि भारत से ताल्लुक रखने वाले अंपायर के फैसले पाकिस्तान के खिलाफ गए। मैंने इस सिलसिले में साबिक ओलंपियन समीउल्लाह को जहमत दी और उनसे पूछा कि हसन सरदार की इस बात में कितनी हकीकत है और क्या उन्हें इस तरह का बयान देना चाहिए था।
ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर स्कोर 4-3 होता तो मैं ये ज़रूर कहता कि पाकिस्तान की टीम ने 3 गोल किए हुए थे, 4th गोल नहीं करने दिया। ये नहीं कहना चाहिए कि जी एक की वजह से हमने एक गोल नहीं कर पाए। मैंने भी देखा मैच, गलती हो सकती है, लेकिन जो रिप्ले था, जब भी पाकिस्तान ने लिया उसने जो डिसीजन दिया, मेरे ख्याल में अगर मैं भी होता तो मैं वो डिसीजन देता। हमें तब क्रिटिसाइज़ करना चाहिए मैनेजर को, कोच को, खासतौर पर हसन सरदार का मैं नाम लूँगा, कि अगर पाकिस्तान की टीम बड़े नैरो मार्जिन से हारती, ये तो एक मार्जिन ही ऐसा था कि 1-0 जिसमें किसी वक्त भी वो ड्रॉ हो सकता था, तो इससे ताल्लुक ख़राब नहीं करने चाहिए, क्योंकि यही एशियन हॉकी फेडरेशन होगी और फिर यही खिलाड़ी होंगे और फिर यही अंपायर होंगे और फिर यही मैनेजमेंट होगी, तो इससे इज्तनाब करना चाहिए और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अच्छा नहीं खेले, खासतौर पर आखिरी 2 क्वार्टर जिसकी वजह से जापान की टीम जीती और वो डिजर्व करती और उनको मुबारकबाद देनी चाहिए।
मैंने एक और साबिक ओलंपियन खालिद बशीर से भी बात की और उनसे पूछा कि जापान के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त की बुनियादी वजह क्या बनी।
पूल मैचेस जो हमारे थे उसमें हमारे पूल मैचेस में हमारी जो मैचेस थे वो एक 86वें नंबर की रैंकिंग की टीम थी, एक 46वें नंबर की रैंकिंग की टीम थी और एक थी 33वें रैंकिंग की टीम, जिनके साथ हमने मेल खेला और उनको हमने गोल किए और हमने लोगों को बेवकूफ और वहां को बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि हमारी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छे गोल कर रहे हैं। जब भी 86वें नंबर और 46वें नंबर और 33वें रैंकिंग की टीम और आप 13वें नंबर रैंकिंग की टीम खेलोगे तो उनको गोल ही करोगे और क्या करोगे आप, तो ये कौन सी परफॉर्मेंस हुई? ये कोई परफॉर्मेंस नहीं। परफॉर्मेंस अब थी इनकी जब इन्होंने सेमीफाइनल जीतना था और फाइनल जीतना था और गोल लेके फिर इन्होंने वर्ल्ड कप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, तो मेरे ख्याल में कल इनकी सारी जो इनके वो दावे थे उनसे पर्दा उठ गया है। जब ये फेडरेशन आई तो हमारी रैंकिंग थी 9th रैंकिंग थी दुनिया में, अब हम 13वीं रैंकिंग के ऊपर है। 2014 की एशियन गेम्स में हमने फाइनल खेला, हमने सिल्वर मेडल जीता। 2010 की एशियन गेम्स हमने गोल्ड मेडल जीता और आज हम सेमीफाइनल से बाहर हैं और तीसरी पोजीशन के लिए हम खेलने जा रहे हैं और फिर हम दावे करते हैं कि जी हम एशियन गेम हमारा हदफ है। पूरे साल में हम कहते रहे कि जी हमारा हदफ अपनी जो इनके माली बेजाबतियां और जो करप्शन के मामले मीडिया में चल रहे थे उसको पर्दा डालने के लिए और टीम की बुरी परफॉर्मेंस को पर्दा डालने के लिए कहते रहे हमारा हदफ यह है। तो हदफ आपके सामने है।
और अब एशियन गेम्स में पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी का तज़िया, जिसके लिए मैंने सहाफ़ी शाहिद अख्तर हाशमी से राब्ता किया और उनसे मेरा पहला सवाल था कि एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स 4 साल के वक्फे के बाद होते हैं। पाकिस्तान 4.5 साल सोता रहता है और ऐन इन खेलों के आगाज पर सब जागते हैं, ऐसा क्यों है?
बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि गाफिलाना और बड़ी जालिमाना नींद होती है तकरीबन 4.5 साल और फिर एकदम से जाग आते हैं, इसका भाई, उसका बेटा, उसकी बेटी, ये कर करा के किसी तरह एक दस्ता तश्कील दे दिया जाता है और फिर वो इन खेलों में चला जाता है। होना ये चाहिए कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में वो खिलाड़ी जाएं, वो एथलीट जाएं जिनके जीतने का कुछ चांस हो। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ये ऐसे खेल हैं तीन हॉकी के अलावा जिनमें पाकिस्तान मेडल जीत सकता है। तो सारा खर्चा बचाएं, इन तीन खेलों के ऊपर तवज्जो दें, इन तीन खेलों के अच्छे हुनरमंद खिलाड़ी भेजें ताकि वो मेडल जीते, और अगर वो मेडल नहीं भी जीतेंगे तो वो कुछ ना कुछ सीख कर आएंगे।
शाहिद हाशमी से मैंने पूछा कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत स्पोर्ट्स को कभी तरजीह नहीं दे पाई है, खेलों की फेडरेशन माली मुश्किलात का रोना रोती हैं, लेकिन जब खेलों का वक्त आता है तो एक बड़ा दस्ता, एक बड़ा लश्कर इन खेलों में नजर आता है, क्यों?
बिल्कुल, मुझे इस सवाल के जवाब में मुश्ताक अहमद यूसुफी की एक लाइन याद आती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो खेलों को भी तालीम का जरिया समझते हैं जबकि हम तालीम को खेल समझते हैं। तो जब ऐसे मुल्क में जिसमें तालीम को ही खेल समझा जाता हो तो उसमें खेल का क्या आप वो कर सकते हैं, पता ही नहीं होता कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है। एक राबता कमेटी बनाई हुई है बैन सूबाई, उसका भी बड़ा बुरा हाल है, उसको भी पता नहीं होता कि स्पोर्ट्स की फेडरेशन खेल क्या कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि 353 रुकनी दस्ता, ये बहुत बड़ा दस्ता है, इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को। एक बड़ी मजे की बात पता चली कि एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस के 4 खिलाड़ी गए, उन चारों ने तकरीबन 9 मैचेस खेले, एक भी सेट नहीं जीता। तो ये कितना बुरा है कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के पैसे पे इस तरह जॉय राइडिंग की जाए।
शायद हाशमी से मेरा आखिरी सवाल था कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और उनके कैंप्स का इनेकाद है, लेकिन खेलों के बजट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहों की नज़र हो जाता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन में भी बरसों से बैठे हुए ओहदेदार, आखिर ये सूरत हाल तब्दील होगी या नहीं?
जनरल आरिफ हसन 4th टर्म में है, उनको चाहिए खुद ब खुद साइड पे हो जाए और पाकिस्तान की नई हुकूमत को मौका दें कि वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का कोई नया ओहदेदार लेके आए। जाहिर है इलेक्शन का प्रोसेस होगा, उसमें 2 ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए जिनको स्पोर्ट्स की नॉलेज भी हो, सूझबूझ हो, और वो पाकिस्तान की ओलंपिक एसोसिएशन के लिए कुछ काम कर सकें, पोस्ट ऑफिस का काम ना करें। पीओए ज्यादातर पोस्ट ऑफिस का काम करती है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अच्छे लोग अपॉइंट हों तभी हमारे खेलों में तरक्की आएगी, वरना बड़ा मुश्किल है।
एशियन गेम्स में भारत की कारकर्दगी ठीक ठाक ही रही है। 4 साल पहले भारत ने 11 तिलाई तमगे जीते थे, इस बार ये तादाद 13 तक जा पहुंची है, लेकिन भारत को सबसे बड़ा धचका हॉकी और कबड्डी में लगा है। भारत की एशियन गेम्स में कारकर्दगी के साथ दिल्ली से आदेश कुमार गुप्ता।
सुनील विद द बॉल नाउ,
प्रेशर ऑन हिम, ही इज मिस इन सडन डेथ, मलेशिया हैज बीटन इंडिया 5-4 इन द सेमीफाइनल।
इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में जारी एशियाई खेलों में कल हॉकी में साबिक चैंपियन और इस मर्तबा भी गोल्ड मेडल के दावेदार भारत को मलेशिया ने सेमीफाइनल में सडन डेथ में 7-6 से हरा कर गहरा धचका दिया, और इसी के साथ भारतीय टीम के ओलंपिक्स में जगह बनाने के मंसूबे भी रेत के महल की माफिक ढह गए। हालांकि खातून टीम फाइनल में पहुँचने में कामयाब रही। इससे पहले भारत को कबड्डी में भी अपने दोनों खिताब गंवाने का मलाल रहा, जब 7 बार की चैंपियन मर्दों की कबड्डी टीम सेमीफाइनल में ईरान से 27-18 से हार गई, तो खातून कबड्डी टीम भी खिताबी मुकाबले में ईरान से ही 27-24 से हार गई। इस डबल झटके से गुस्साए भारत को कबड्डी में एशिया खेलों में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाली टीम के साबिक कप्तान रणधीर सिंह।
मैंने हर प्लेयर को ये कहा था, अति आत्मविश्वास आपको ले डूबेगा, 1,35,00,00,000 लोगों का दिल दुखा दिया।
खैर, हॉकी में मिली शिकस्त के बाद की 1500 मीटर दौड़ में भारत के जिनसन जॉनसन ने गोल्ड मेडल जीतकर गम में डूबे खेमे को राहत दिलाई।
ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, इंडिया विन द 800, दे विन द 1500, दे डोमिनेट द मिडिल डिस्टेंसेस इन एशिया।
वैसे भी एथलीटों ने ही इस मर्तबा भारत को मेडल टैली में कुछ खास बनाया। कल तक उन्होंने 7 गोल्ड, 10 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल समेत 19 मेडल अपने नाम किए। पिछली मर्तबा उन्होंने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल समेत 13 मेडल जीते थे। एथलेटिक्स में इस बार नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता।
कंपटीशन अच्छा था, लेकिन मैं कोशिश यही करके आया था कि गोल्ड लेके जाऊंगा अपने देश के लिए। जब तक हम कंपटीशन में होते हैं तो हमको सीरियस रहना ही पड़ता है कि कुछ पता नहीं होता है किस टाइम किसका थ्रो अच्छा निकल जाए।
और कौन जानता था कि भारत को गोला फेंक और ट्रिपल जंप में भी गोल्ड मेडल मिलेगा। निशानेबाजों ने पिछली बार की ही तरह इस बार 9 मेडल जीते। लेकिन बैडमिंटन में पहली मर्तबा साइना नेहवाल ने ब्रॉन्ज और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता। सिंधु फूली नहीं समाई।
I played the finals in this tournament and I'm very happy about it. But it feels really nice and it's a proud moment for the country definitely that two Indians are on the podium.
इन्हीं एशियाई खेलों में भारत के वेटलिफ्टर अपना खाता भी नहीं खोल सके जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 मेडल जीते थे। भारत ने इस बार सिपक टाकरा, टेबल टेनिस, वुशू, ब्रिज, कुरैश और घुड़सवारी में भी कुछ मेडल पहली मर्तबा हासिल किए हैं, लेकिन कबड्डी में बादशाहत के खोने और हॉकी में हार से उभरने में उसे काफी वक्त लगेगा।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अगले माह की 15 तारीख से यूएई में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक क्वालिफायर हिस्सा लेंगे। साउथ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप 2018 मंगल के रोज ढाका में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में 60 टीमें शिरकत करेंगे जिन्हें दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान ग्रुप ए और इंडिया, श्रीलंका और मालदीव को ग्रुप बी में रखा गया है। मिस्र में यूएई की डिफेंडिंग चैंपियन अल वहदा फुटबॉल क्लब ने अल ऐन फुटबॉल क्लब को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर अरेबियन गल्फ सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया। छठी एशियन टीम स्नूकर चैंपियनशिप और 7वीं सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप अगले माह की 19 तारीख से कतर में खेली जाएगी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अक्टूबर की 10 तारीख से श्रीलंका का दौरा करेगी। वो इस दौरे पर श्रीलंका के खिलाफ 5 वनडे इंटरनेशनल, 1 2020 और 3 टेस्ट मैच खेलेगी।
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।